समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम परिक्रमा में। 2024 का आखिरी महीना भी धीरे धीरे हमें अलविदा कह रहा है, 2025 की आहट सुनाई देने लगी है। और जैसा कि शायर खलील धनतेज भी कहते हैं कि अब के बरस भी कस्से बनेंगे कमाल के। खलील साहब पर हम कार्यक्रम में आगे बात करेंगे क्योंकि आज उनकी जयंती है। खैर, अगला बरस अपनी मुट्ठी में क्या क्या छिपाए है ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल तो पूरे देश में ठंड की आमद हो चुकी है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में भी इस बार जमकर ठंड पड़ रही है। तो श्रोताओं, इन सब बातों से तो वैसे आप सभी वाकिफ हैं, तो अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि देश दुनिया की नई और ताजा खबरें क्या हैं, विभिन्न राज्यों की परिक्रमा भी हम करेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के माध्यम से, खेलों की दुनिया और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और उन हस्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या फिर जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुदिता और मेरे साथ है मेरे को होस्ट अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुदिता, यू वर मेंशनिंग द विंटर कोल्ड एंड यस्टरडे मॉर्निंग वाज द कोल्डेस्ट डे इन दिल्ली फॉर दिस सीजन, इज इट? एंड आई लाइक टू अर्ज ऑल द यंग एंड द एल्डरली टू कीप देमसेल्व्स वार्म एंड गार्ड अगेंस्ट द विंटर चिल। बट मुदिता, आई थिंक विंटर हैज गॉट इट्स ओन चार्म एंड दिल्ली इज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द विंटर। सम सिटीज एक्चुअली डोंट हैव विंटर्स, एंड इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर वेयर वी टेक आउट द वूलन्स, द जैकेट्स, द स्कार्व्स, द कैप्स, इजंट इट? It's got its own charm. Anyway, so you are tuned to Parikrama 100.1 FM. I'm Abhishek Mukhopadhyay, and with me today is my co-host Mudita. And for you, we have a selection of news, a discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first. Lok Sabha and Rajya Sabha witness adjournments amid uproar by Treasury and opposition benches over various issues.
सरकार ने कहा सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की योजना जल्द ही पूरे देश में शुरू की जाएगी। इस योजना से अब तक 6 राज्यों में 2000 से अधिक लोगों की जान बचाई गई।
7 माओवादी किल्ड इन एन एनकाउंटर विद सिक्योरिटी फोर्सेस इन नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़।
संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे।
Portugal's foreign affairs minister Paulo Rangel arrives in New Delhi on a 4-day official visit to India. And now, Mudita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Day of Neutrality and International Universal Health Coverage Day. Well, to start off, Mudita, International Day of Neutrality is commemorated on December 12th, that is today, every year, to raise awareness regarding the importance of neutrality in intergovernmental relations and to strengthen peace and security at the global level. So, what is neutrality? Well, let me tell our listeners, according to the international law, a neutral country is also called a sovereign state. A neutral country is one that remains neutral by keeping itself away from the war between other countries. That is, that country does not support any of the warring countries. Apart from this, neutral countries always insist on resolving the dispute through dialogue instead of war. And Switzerland is a country which is very famous for its policy of neutrality. And due to this policy, Switzerland has been largely successful in avoiding the destruction of the First and the Second World Wars.
और ये दिन कहां से शुरू हुआ हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 फरवरी 2017 को एक संकल्प के माध्यम से 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस के रूप में घोषित किया, जिसमें 2030 का जो एजेंडा है सतत विकास का, उसके और शांति के संरक्षण के बीच संबंध पर ध्यान भी दिया गया। तो अभिषेक, हम सब जानते हैं कि तटस्थता की नीति जो है वो वैश्विक शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देती है और दुनिया के देशों के बीच शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा अभिषेक ने भी बताया कि एक तटस्थ देश वो होता है जो अन्य देशों के बीच होने वाले युद्ध से खुद को दूर रखते हुए तटस्थ बना रहता है, यानी वो युद्ध में शामिल देशों में से किसी भी देश का समर्थन नहीं करता। इसके अलावा तटस्थ देश हमेशा युद्ध की जगह बातचीत से विवाद का हल निकालने पर जोर देता है। अभिषेक ने भी स्विट्जरलैंड का उदाहरण आपको दिया है, जो अपनी तटस्थता की नीति को लेकर काफी मशहूर है।
Yes, Mudita, let's also talk about preventive diplomacy. And the United Nations is committed to moving from a culture of reaction to one of prevention. And actually, Mudita, the term preventive diplomacy refers to diplomatic action taken to prevent disputes from escalating into conflicts and to limit the spread of conflicts when they occur. And while it is conducted in different forms and fora, both public and private, the most common expression of preventive diplomacy is found in the work of envoys dispatched to crisis areas to encourage dialogue, compromise, and peaceful resolution of tensions. So I hear, Mudita, the role of the diplomats is very of paramount importance, isn't it?
बिल्कुल, बिल्कुल जरूरी है अभिषेक। और मुझे लगता है इसको अगर हम आसान तरीके से समझना चाहें तो घर में जब बच्चों के बीच में लड़ाई होती है तो घर के जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं लड़ाई वो उतनी बढ़ती जाती है।
Absolutely. We are talking about Switzerland being a neutral country.
जी, जी.
Not only is it neutral, but it's a tourist destination also, you know. So you can have a peaceful holiday
जी,
there.
जी, जी, बिल्कुल.
Free from all the strife and tension.
No, बिल्कुल. तो वो बहुत जरूरी है कि कोई भी विवाद, कोई भी झगड़े उस तरीके से नहीं बढ़े। तो जितने कम देश इन्वॉल्व होंगे, जितने कम देश उसमें शामिल होंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, उतने उसके चांसेस कम होते जाएंगे। और ये भूमिका संयुक्त राष्ट्र बहुत अच्छे से निभाता रहा है। अपनी स्थापना के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने सभी चरणों में विभिन्न देशों के बीच अलग अलग तरह के संघर्षों में मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो किसी विवाद के सशस्त्र संघर्ष में बदलने से पहले हो, युद्ध और हिंसा की स्थिति में हो, या फिर शांति समझौतों के कार्यान्वयन के दौरान।
नाउ लेट्स ऑल्सो टच अबाउट अ बिट अबाउट पीस मेकिंग, मुदिता। यूएन पीस मेकिंग फ्लरिश इन द डेकेड फॉलोइंग द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, एज मेनी लॉन्ग स्टैंडिंग आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स वर ब्रॉट टू एन एंड थ्रू पॉलिटिकली नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स, and the organization continues to play a preeminent role in peacekeeping, working increasingly in partnership with regional organizations in order to bring ongoing conflicts to an end and to prevent new crises from emerging or escalating. So with that, we conclude our first section in Dateline section, Mudita. And now moving on to our next topic of the day, that is the International Universal Health Coverage Day, which is UHC Day. And International Universal Health Coverage Day, UHC Day, is commemorated on December 12th, that is also today, each year, in order to raise awareness of universal health coverage, UHC. And this observance provides a common focus for governments, organizations, and individuals to reaffirm the work towards making sure that no person is left behind in the basics of healthcare.
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस पहली बार 12 दिसंबर 2012 को मनाया गया था, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से सभी देशों से अपने नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने का आह्वान किया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 से 2030 के लिए अपनाए गए नए सतत विकास के लक्ष्यों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को शामिल किया गया है।
Yes, and UHC aims to provide everyone everywhere with access to quality health services without facing financial hardship. And over the last two decades, financial protection has eroded. 2 billion people around the world are struggling with financial hardship, and 1.3 billion people have been pushed into poverty because of out-of-pocket health expenses. And individuals are often forced to delay or forego life-saving treatments, resulting in worsening health outcomes and perpetuating the cycle of disease and poverty. And this is a very alarming situation, Mudita, when the lack of money prevents us from getting the needed treatment, isn't it?
बिल्कुल अभिषेक। और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज वो मानवाधिकार है जो ये गारंटी देता है कि किसी देश के लोगों और समुदायों को वित्तीय संकट में पड़े बिना जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। और इससे जो हमें फायदे होते हैं उसमें पहली बात तो ये है कि ये सुनिश्चित करता है कि आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल तक सबकी समान पहुंच। इसके अलावा वो लोगों की अपनी जेब से होने वाली लागत को कम करता है, जिससे लोगों को चिकित्सा बिलों के परिणाम स्वरूप आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़े। और इसके अलावा बीमारियों को गंभीर स्थिति तक बढ़ने से भी रोकता है।
Yes, and India has attained enhancement of UHC through various government schemes which have intervened in offering affordable health care and some Notable schemes include Ayushman Bharat, which was implemented in 2018, and this scheme offers up to rupees 5 lakh per family annually for secondary and tertiary care hospitalization to families in economic distress. And the National Health Mission, NHM, set up in 2013, NHM aims to provide equitable access to health care, especially in rural and underserved areas. It supports health infrastructure and human resource development.
इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसका उद्देश्य जन औषधि केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है, जो लोगों की जेब से स्वास्थ्य देखभाल में होने वाले खर्च में कमी लाने में योगदान देता है। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा, जो कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लक्षित करता है, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है, जिसमें बीमारी और मातृत्व के लिए व्यापक चिकित्सा देखभाल शामिल है।
UHC Day provides an opportunity for governments to reaffirm their commitment to achieving UHC by 2030 and accelerate progress towards ensuring that health is no longer a financial burden for anyone. And on UHC Day 2024, WHO urges governments to take immediate actions to ensure that health services are accessible and affordable for all.
और अब समय है विभिन्न राज्यों की परिक्रमा का, तो चलते हैं अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानते हैं कि उनके पास क्या है खास। तो अभिषेक, सबसे पहले हम कहाँ चल रहे हैं?
Yes, we start off with a story from Jammu and Kashmir. And in Jammu and Kashmir, work has started on the much talked about 175 kilometers long Gurdaspur-Jammu Tawi Natural Gas Pipeline Project. And Mudita, this project is expected to supply domestic gas to Jammu households by 2026. And the pipeline is designed to transport up to 2 million standard cubic meters per day. And this prestigious pipeline project involves developing essential infrastructure, including laying pipes, establishing pumping stations, and creating distribution networks. So let's hear more from our correspondent, Gulshan Raina.
The Gurdaspur-Jammu gas pipeline is expected to play a pivotal role in meeting the natural gas requirements of J&K. Once completed, the pipeline will transport environment-friendly fuel to Jammu and eventually to Kashmir, enhancing the region's energy security. The tentative route of the main trunk pipeline is Gurdaspur, Pathankot, Kathua, Samba, Jammu City, with the originating point at Gurdaspur and the termination point in Jammu City. All these efforts will yield a year-round gas supply irrespective of weather and road condition. The government has been initiating various measures to provide various sources of clean cooking and heating fuel, which include upgrading the electricity distribution network and now the gas pipeline. The pipeline originates from the Gurdaspur-Jammu natural gas pipeline and extension to Srinagar, but can have some other vendor than GAIL. Both these gas pipelines are set to bolster the energy security of the region by enabling the transportation of natural gas from Gurdaspur in Punjab to Jammu and Kashmir. The gas pipeline will take some years to lay before starting carrying supply to Kashmir, but Kashmir will get connected to the rest of the country by train by early next year. Even this will provide a much needed alternative to carry gas to Kashmir region. Furthermore, the availability of natural gas through this pipeline diversifies the energy mix of the regions, reducing reliance on other energy sources and increasing energy resilience while lowering vulnerability to supply disruptions. By promoting the use of natural gas, the pipeline plays a key role in the growth of the natural gas market in Punjab and Jammu and Kashmir. This creates opportunity for gas-based industries, encourages investment and fosters completion, leading to a more efficient and dynamic market. Introducing modern gas heating infrastructure in the Kashmir Valley could become the next significant development akin to many advanced countries. This transformative move not only offers commercial benefit but also contributes to environmental preservation, aligning with commitment made under the Paris Agreement to curtail carbon emissions substantially. The utilization of natural gas will lead to job creation, enhanced productivity and an overall improvement in living standards. This is Anne Gulshan Rana for Parikrama, Jammu.
और श्रोताओं, जैसा कि आपको पता ही है कि अगला महाकुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने वाला है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अच्छी पहल की है। सरकार ने इस बार स्वच्छ महाकुंभ का आह्वान किया है। इसको लेकर व्यापक पैमाने पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार QR बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से टॉयलेट्स में स्वच्छता का सर्वे किया जाएगा। इसके अलावा शौचालय, सड़कों की सफाई व्यवस्था, टेंट सिटी के निरीक्षण और प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए गंगा सेवा दूतों को जिम्मेदारी दी गई है। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आने की संभावना है। ऐसे में पूरे मेला क्षेत्र में 1.5 लाख टॉयलेट्स और यूरिनल्स स्थापित किए जा रहे हैं। टॉयलेट्स इंस्टॉल किए जाने के साथ साथ इनको स्वच्छ बनाए रखने के लिए भी व्यापक तैयारियां की गई हैं। सफाई के लिए जेट स्प्रे क्लीनिंग सिस्टम अपनाया जाएगा ताकि मैनुअल सफाई की आवश्यकता न पड़े। महाकुंभ मेला की विशेष कार्याधिकारी आकांक्षा राणा के मुताबिक स्वच्छता को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार की गई है। इस बार QR कोड से स्वच्छता की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये ऐप बेस्ड फीडबैक प्रोवाइड कराएगा। इन सभी टॉयलेट्स की निगरानी का जिम्मा गंगा सेवा दूतों को सौंपा गया है। ये महाकुंभ के दौरान विशेष तौर पर शौचालय, सड़कों की सफाई व्यवस्था, टेंट सिटी का निरीक्षण करेंगे।
पूरे कुंभ की अवधि के लिए लगभग 2500 हम गंगा सेवा दूत हायर कर रहे हैं। इनके विशेषकर दो कार्य रहेंगे। एक तो मोबाइल ऐप के माध्यम से ये हमारे जो शौचालय लगते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स लगते हैं, उनकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। एक ऐप होता है ICT बेस्ड मॉनिटरिंग ऐप, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं प्रत्येक शौचालय को लेकर, और उन क्वेश्चनर पे वो फीडिंग करते हैं सुबह और शाम वहां पे जाकर। और अगर किसी भी पैरामीटर में कोई कमी पाई जाती है तो वेंडर के पास SMS और ईमेल के माध्यम से वो सूचना चली जाती है, और वेंडर को विदिन 24 आवर्स उस पे करेक्टिव मेजर्स लेकर सुनिश्चित करना होता है कि आपके जो शौचालय है वो क्रियाशील अवस्था में रहे, साफ रहे और स्वच्छ रहे।
महाकुंभ में स्वच्छता के साथ ही यहां आने वाले लोगों को जागरूक करने में भी गंगा सेवा दूतों की बड़ी भूमिका होगी। महाकुंभ मेला के विशेष कार्याधिकारी आकांक्षा राणा ने बताया कि गंगा सेवा दूतों को सैनिटेशन निरीक्षण, टेंट सिटी की कार्य योजना, ICT सिस्टम और अग्नि सुरक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। गंगा सेवा दूत विषय विशेषज्ञों द्वारा ट्रेंड किए जाएंगे और उनका मॉक ड्रिल भी कराया जाएगा।
अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है और आगे आने वाले कुछ दिनों में हम इनको यहाँ पे डिप्लॉय कर लेंगे। ये गंगा सेवा दूत का वित्त पोषण नमामि गंगे द्वारा किया जा रहा है और यहाँ पे उनके रहने और खाने की समुचित व्यवस्था मेरा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी।
सनातन संस्कृति की अमूर्त विरासत महाकुंभ में सफाई, सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर पूरी कवायद की जा रही है। गंगा सेवा दूत इसमें महत्वपूर्ण कड़ी होंगे, साथ ही महाकुंभ को प्लास्टिक मुक्त रखने में भी इनकी भूमिका होगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी लखनऊ से शैलेंद्र शर्मा।
And the High Powered Committee constituted for the Union Territory of Ladakh held a meeting as security in New Delhi, and during the meeting 33% reservation for women in Ladakh Autonomous Hill Development Council was announced. And let's hear more from our correspondent Khurshid Yusuf.
The reservations for women in hill councils has also been the long pending demand of women in Ladakh. Since the formation of Hill Council in Ladakh, no women representative was elected till date. We have with us Rinchan Lamu, member of the National Commission.
में लद्दाख के महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का भी उन्होंने डिसीजन सुनाया था, जिसका हम वेलकम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के शीर्ष नेतृत्व को लद्दाख के महिलाओं के तरफ से हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो है कई सालों से, कई दशकों से हम उठाते आ रहे हैं, क्योंकि लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल बने हुए 30 साल हो रहे हैं, अभी तक एक भी महिला चुनकर नहीं आ सके हैं। तो ये डिसीजन लद्दाख के महिलाओं के लिए, लद्दाख के हित के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पोलिटिकल स्फीयर्स इज अ वेलकम स्टेप इन द वुमेन एम्पावरमेंट इन लद्दाख। हेड्स ऑफ वेरियस वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन लद्दाख अप्रिशिएटेड द स्टेप इन एडवांसिंग द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन इन द रीजन। फॉर परिक्रमा, दिस इज खुर्शीद यूसुफ फ्रॉम लेह लद्दाख।
और श्रोताओं, अब हम लेकर चलते हैं आपको आजादी के सफर पर और जानते हैं आज के दिन की खास घटनाएं।
इन टुडेज एपिसोड वी पे ट्रिब्यूट टू फ्रीडम फाइटर पाथोगन नेंगमिन्जा सांगमा, हु वाज मार्टर्ड ऑन द 12th ऑफ दिसंबर 1872। अ गारो ट्राइब लीडर, थोगन्स नेम इज इमॉर्टलाइज्ड एट द मार्टर्स कॉलम इन शिलांग, मेघालय।
In 1862, the fierce rebellion of the Jaintias was put down. As the British advanced into the Garo Hills in Meghalaya, they faced fierce resistance from the local tribes. Pa Thogan Nengmingza, a Garo warrior, refused to cave in to the British forces who wanted to occupy his homeland. In December 1872, the British soldiers made camp in a village called Macha Rongkrek in the Garo Hills. Pa Thogan and his Garo warriors attacked the British soldiers. The British quickly roused themselves and retaliated.
From that point, it would prove to be a one-sided battle with the swords and spears of the Garo warriors, no match for the British guns. The Garos fought to the last man, with Pathogan Nengminza dying during the battle from a barrage of bullets.
The British would go on to take control of the region, but the recognition of the bravery of Pathogan and his sacrifice in his attempt to protect his land and his people has outlasted the British. We salute this great Garo leader.
We also remember the freedom fighter, reformer and philosopher Baba Raghav Das, who was born on 12th December 1896.
In 1921, when Mahatma Gandhi visited Gorakhpur, Baba met him and got inspired to work for independence and serve the oppressed people. Later, Baba accompanied Gandhiji during the Dandi March.
During the independence movement, he was imprisoned many times, the first being in 1921. Raghav Das Ashram in Bara was the epicenter of independence activities. He was very closely associated with Ram Prasad Bismil, and after Ram Prasad's execution, Raghav Das made a memorial for him at the ashram.
After independence, Baba took an active part in the Bhudan movement of Vinoba Bhave. He initiated many educational institutes in Deoria, Barhaj and Kushinagar. The noble saint and philosopher left for his heavenly abode on January the 15th, 1958. The government of India released a postage stamp in his honour in 1998.
We also remember freedom fighter Konda Venkata Rangareddy, who was born on 12th December 1890. Popularly known as K.V. Rangareddy, he fought against the Razakars of the Nizam of Hyderabad. After the integration of Hyderabad in India, Reddy served as the Minister of Revenue in 1959 and became Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh in 1961. He participated in the Telangana movement, and to honour him, a district is named after him.
We also remember freedom fighter Baba Genu Said, who was perhaps the first to be martyred for the cause of the Swadeshi movement on the 12th of December 1930. A mill worker in Bombay, Genu was influenced by the spirit of the Swadeshi movement propounded by Mahatma Gandhi.
On 12th December 1930, a cloth merchant named George Frazier of Manchester was moving loads of foreign-made cloth from his shop in the Fort region to Bombay Port.
Near Bhangwadi on Kalba Devi Road, Babu Genu stood in front of the truck, shouting praises of Mahatma Gandhi. When the police officer ordered the Indian driver to drive the truck over Babu Genu, he refused. After that, the English police officer himself drove the truck and ran over Babu Genu, crushing him to death. This resulted in a huge wave of anger, strikes and protests throughout Bombay. We salute Shaheed Babu Genu Sahib.
And now on to some sports news. Prasar Bharati today signed an MOU with Hockey India New Delhi to provide live broadcast of the upcoming Hockey India League. With this MOU, Doordarshan has become the official broadcast partner for Hockey India League HIL 2024-25. And this league will commence from the 20th of this month in Rourkela, Odisha and Ranchi, Jharkhand. And on the occasion, HIL governing committee member Bholanath Singh said that hockey is more than just a sport for the country. It is also a symbol of nation's unity and pride. He added that HIL is ready to present a spectacular season of HIL after partnership with Doordarshan. And Mr. Singh expressed confidence that this partnership will strengthen the people's bond with hockey.
दूरदर्शन एक ऐसी चीज है जो घर घर में है, हर एक गांव देहात में है, और जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी गांव देहात से ही आए हैं, और मेरे ख्याल से आने वाला समय में गेम चेंजर साबित होगा। आज हॉकी इससे जुड़कर एक नया आयाम शुरू करने वाला है, दूरदर्शन के माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से हॉकी को हर एक घर में पहुंचाएगा। हॉकी इंडिया एक प्रयास है, प्रसार भारती से जो एग्रीमेंट आज हम लोग साइन किए हैं, और दोनों हम लोग मिलकर जो राष्ट्रीय खेल है हमारा, उसको चरम सीमा पर, बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
Yes, and in his remarks, Prasar Bharati Chairman Navneet Sehgal has termed this MOU as a big milestone in the history of hockey. He added that under the MOU, national sports hockey will reach across the country, including rural India.
हॉकी इंडिया और प्रसार भारती के बीच में एमओयू साइन हुआ है, जिसमें कि अब से हॉकी इंडिया के सभी जो मैचेस हैं वो हॉकी इंडिया लीग शामिल करते हुए नेशनल चैंपियनशिप और जितने हॉकी इंडिया की टूर्नामेंट है उन सबको डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव दिखाया जाएगा और ऑल इंडिया रेडियो से कमेंट्री उसकी की जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहले टेलीकास्ट होते थे, उनकी रीच नहीं थी, अब हमारे माध्यम से, प्रसार भारती के माध्यम से, डीडी स्पोर्ट्स के माध्यम से, ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से घर घर तक हॉकी को हम पहुंचाने में सफल होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा उनका लक्ष्य है कि देश में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाया जाए, खेल का और प्रचार प्रसार किया जाए, तो आज हॉकी इंडिया लीग, हॉकी इंडिया के साथ एमओयू जो प्रसार भारती का हुआ है उस तरफ एक बहुत बड़ा कदम है।
Prasar Bharati CEO Gaurav Dwivedi expressed that Doordarshan is privileged to partner with Hockey India League. He added, through Prasar Bharati's comprehensive coverage, we aim to bring the electrifying spirit of hockey, including the historic debut of the women's HIL and amplifying the league's impact. Our correspondent reports that this year's hockey edition is historic as it marks the inaugural season of the Women's Hockey India League alongside the much anticipated men's competition. The league will feature 8 men's teams and 4 women's teams. And at the MOU exchange ceremony, Director General of Akashvani News, Dr. Pragya Paliwal Gaur, Director General of Doordarshan Kanchan Prasad, Director General of Doordarshan News Priya Kumar, and other senior officials of Prasar Bharati and Hockey India also graced the occasion. And now moving on to some business news, benchmark domestic equity indices today ended in negative territory. The 30-share BSE Sensex shed 236 points to close at 81,290, and the NSE Nifty dropped 93 points to end at 24,549. In the global crude market, Brent crude was trading 0.14%, up at $73.62 per barrel, and WTI crude gained 0.17% to trade at $70.41 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading down at 78,970 rupees for 10 grams when reports last came in.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्म दिवस। नरहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नरहो न निराश करो मन को। आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की पुण्यतिथि है जिनकी लेखनी ने आजादी के आंदोलन में जोश भरने का काम किया और अभिषेक उनकी रचना भारत भारती तो जैसे स्वाधीनता संग्राम का घोषणा पत्र बन गई थी। हिन्दी साहित्य में खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जयद्रथवध, भारत भारती, साकेत, यशोधरा जैसी कई मशहूर रचनाएं उन्होंने लिखी। राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक नैतिकता और मानवीय उत्थान उनकी कविताओं के प्रमुख विषय रहे हैं। वे लिखते भी हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वे राज्यसभा के सदस्य भी बने और 1954 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
रामानंद सागर, बोर्न चंद्रमौली चोपड़ा, पास्ड अवे इन 2005, ही वाज एन इंडियन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर। Best known for making the television show Ramayan from 1987 to 1988, and is best known for his contribution to the Indian historical serials Ramayan and Krishna, which broke several viewership records globally.
अभिषेक, 80 के दशक में रविवार की सुबह जैसे ही टीवी पर यह गीत बजता था तो सड़कें सुनसान हो जाती थी और लोग अपना सारा कामकाज छोड़कर टीवी से चिपक जाते थे। आज गुजराती और उर्दू के अजीम शायर खलील धनतेजवी की जयंती है। दिल को छूने वाली उनकी शायरी जिंदगी के अहम सबक भी सिखाती है। माना कि जिंदगी से बहुत प्यार है, मगर कब तक रखोगे कांच का बर्तन संभाल के। और जगजीत सिंह जी की गाई मशहूर गजल तो सबने सुनी ही होगी, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं। ये खलील साहब की ही लिखी हुई गजल है। 2019 में उन्हें नरसिंह मेहता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2022 में उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
Yes, and शिवाजी राव गायकवाड वाज बोर्न ऑन दिस डे 1950, नोन प्रोफेशनली एज रजनीकांत। ही इज एन एक्टर हु प्रीडोमिनेंटली वर्क्स इन तमिल सिनेमा। इन अ करियर स्पैनिंग ओवर 5 डेकेड्स ही हैज डन 170 फिल्म्स दैट इंक्लूड्स फिल्म्स इन तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली एंड मलयालम। He is widely recorded to be regarded as one of the most successful and popular actors in the history of Indian cinema. Let's listen in to a dialogue from one of his movies.
क्या चाहिए तुझे? ज़मीन ना? कल किसी के नाम पर थी, कल को किसी और के नाम पर होगी। कब्र की 6 गज ज़मीन भी अपनी नहीं होती। क्यों इस तरह पागल हो रहा है?
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए मुदिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर। नमस्कार।